Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Oh, oh, oh. Adiguru, भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवानंद लहरी नामक स्तोत्र के आधार पर शिव भक्ति से ओतप्रोत कुछ भाव को व्याख्या कर रहे हैं। भाव ये स्तोत्र बड़ा भाव भरा स्तोत्र है, भक्ति भाव से ओतप्रोत है। आदिगुरु शंकराचार्य जी शिव के सामने भक्ति भावपूर्ण प्रार्थना करते हैं। अभ्यास के लिए 45वां श्लोक। छंदसा की शिखान्वितेर द्विजवर ही संसेविते शाश्वते सौख्यापादिनिखेदभेदिनि सुधा सारहि फलेर्दीपिते चेता पक्षिशिखामणे त्यजवृथा सञ्चारमन्यैरलं नित्यं शङ्करपादपद्मयुगली नीडे विहारं कुरु। आकीर्णे नखराज कांति विभवई उद्यत सुधा वैभवैर आधौते पिच पद्मराग ललिते हंस ब्रजैराश्रिते नित्यं भक्ति बधु गणेश्च रहसि स्वेच्छा विहारं कुरु। स्थित्वा मानसराजहं स गिरिजा नाथाङ्घ्रिसौधान्तरे सम्बोध्यान वसन्त सङ्गिनिरिदा रामे अगजीर्णच्छदा स्रस्ता भक्तिलताच्छटा बिलसिता पुण्यप्रवालश्रिताः दीप्यन्ते गुणकोरका जपवच पुष्पाणि सद्वासना ज्ञानानन्दसुधा मरन्दलहरी संवित्फलाभ्युन्नति नित्यानन्दरसालयं सुरमुनि स्वान्ताम्बुजाताश्रयम् स्वच्छं सद्विजसेवितं कलुसरित सद्वासना विस्कृतं सम्बोध्यान सरोवरं व्रजमनो हंसावतंसस्थिरं किं क्षुद्राश्रयपल्लव भ्रमणसं जातश्रमं प्राप्स्यसि आनन्दामृतपूरिता हरपदाम् भोजालवालोद्यता स्थैर्योपघ्नमुवेत्य भक्तिललिता शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानसकायमानपटली माक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्म संवर्धिता। छंदसा की शिखान्वितै द्विजवरै संसेविते शाश्वते सौख्यापादिनिखेदभेदिनि सुधा सारहि फलेर्दीपिते चेता पक्षिशिखामणे त्यजवृथा सञ्चारमन्यैरलं नित्यं शङ्करपादपद्मयुगली नीडे विहारं कुरु। भगवान शंकराचार्य जी वेद रूपी वृक्ष, वेद को एक वृक्ष के रूप में परिकल्पित कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, और मन रूपी जीव को समझा रहे हैं। यह मन जीव का प्रतीक है, क्योंकि मन के माध्यम से ही जीव अपना अस्तित्व व्यक्त करता है। या यूं समझ लो कि उस मन को समझा रहे हैं कि हे मन पक्षी, चेता पक्षी शिखा मणे, संबोधन है, हे चेता, शिखा मणे, क्योंकि मन को कहीं कहीं राजहंस भी कहा है, मानस राजहंस। और लोक भाषा में भी मन को पक्षी की उपमा देते हैं, मन पक्षी उड़ जाए कहते हैं ना। शरीर से जब जीवात्मा का निकलना होता है तो उस समय मन को जीवात्मा के प्रतीक मानकर कहते हैं कि मन पक्षी उड़ जाए। और कहीं कहीं हंसा उड़ गया बोलते हैं, जीव निकल गया तो हंसा उड़ गया, निकल गया, ये भी शब्द। और हम सभी पक्षी का ही प्रतीक है, पक्षी जाति का है। हे चेता पक्षी ही, शिखा मणे माने श्रेष्ठ पक्षी, शिखा माने सिर और मणि माने मड़, मणि हो गया रत्न, सिर में धारण किया हुआ मणि, सर्वोत्कृष्ट चूड़ा मणि बलई कृत वासुकी, जिन भगवान शिव ने चूड़ामणि अपने मस्तक में बलई कृत वासुकी, नाग को बढ़िया गजरे के रूप में पहन रखा है जिन्होंने, चूड़ामणि कृत बलई कृत वासुकी, ऐसे आचार्यों की स्तुति गान में मंगलाचरण में श्लोक आता है। तो बोले हे पक्षी, मन पक्षी, तू बड़ा इधर उधर भटकता रहता है। एक सामान्य नियम है कि पक्षी सगभर पेड़ों को ही पसंद करते हैं, वृक्षों को पसंद करते हैं, जंगल को पसंद करते हैं, जंगलों में भी उस वृक्ष को पसंद करते हैं जिसमें खूब फल हो, खूब घने पत्ते हो, फूल हो, बढ़िया छाएदार हो, बड़े बड़े पेड़ हो। तो प्राय करके पक्षी ऐसे वृक्षों को पसंद करते हैं, ऐसे वृक्षों में रहना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कौवा जाती है, कबूतर की बात छोड़ दो आप, कौवे की बात करते हैं। प्राय हमने देखा है कौवा अपने जो घोंसला बनाता है ना, कभी भी किसी के घरों में घोंसला बनाता हुआ हमने नहीं देखा है। वो छोटा भी होगा तो कोई ना कोई पेड़ चाहिए, आसपास में ऊंचे ऊंचे इतने बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग खड़े हैं, कबूतर तो उस बिल्डिंगों के कहीं ना कहीं छिद्र आदि मिल जाए, कहीं मिले, वो वहीं रहते हैं, वहीं घोंसला बना लेंगे। लेकिन कौवे को हमने देखा उस बिल्डिंगों में कहीं भी घोंसला नहीं बनाता है, उसके बगल में छोटा एक पेड़ भी मिल जाएगा ना उसी में घोंसला बनाएगा, वृक्ष में और घरों में नहीं बैठता कौवा। तो घरों में क्यों नहीं बैठता? तो कौवा नहीं बैठता, हम तो मनुष्य है ना, इसीलिए हम बैठते हैं। तो पक्षी की अपनी अपनी विशेषता है, जाति है। और ये शास्त्र में वर्णन किया हुआ है, जितनी अच्छे जाति के पक्षी होती है ना, वो उतने ही घनदार वृक्षों में अपना आश्रय बनाते हैं। और जो जितने घटिया क्वालिटी के पक्षी होते हैं वो उतने ही उजाड़ वृक्ष में घोंसला बनाते हैं। गृद्ध कंकोपसे विनः, ये देखो पुराण में श्लोक आता है, गुरुम हुं कृत्य तुम कृत्य विप्रान निर्जित्य बाधता, श्मशाने जायते वृक्ष गृद्ध कंकोपसे विनः। कोई व्यक्ति मनुष्य होकर गुरु को वो सीधे तू आदि शब्दों से संबोधन करता है, अपमान करता है, इसका अर्थ है तो गुरु का तिरस्कार करता है, तो क्या समझता है इत्यादि शब्द, गुरुम हुं कृत्य तुम कृत्य विप्रान निर्जित्य बाधता। और कोई ब्राह्मण अर्थात कोई विद्वान को वाद विवाद के द्वारा, वाद से जीतो तो ठीक है, विवाद से जीतना चाहो तुम जीत सकते हो, विवाद से विद्वानों को हरा नहीं सकते वाद से, लेकिन विवाद से तो बड़े बड़े विद्वान हार जाते हैं। वाद जल्प और वितंडा, ये तीन साधन हैं। व्यक्ति जब जल्प और वितंडा में चला जाता है ना, तो बड़े बड़े विद्वान हार जाते हैं, लेकिन उसको अच्छा नहीं माना है वितंडा के द्वारा किसी को परास्त करना हो, और वितंडा का योग प्रयोग करके जो कोई जीतता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। खंडन करना उसका लक्ष्य है, जीतना हर हालत में उसका लक्ष्य है, उसको शास्त्र सम्मत कोई तर्क और युक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। और शंकराचार्य जी कहते हैं दुष्तर्कात सुविरम्यता, मुमुक्षुओं को चाहिए कि दुष्तर्क कभी न करे, वो दुष्तर्क का नाम ही है वितंडा। श्रुति मत तर्को अनुसंधिनी संधीयता, शास्त्र सम्मत जो तर्क है वह उसका नाम है वाद, और शास्त्र विपरीत कुतर्क का नाम है वितंडा। तो वहीं से विवाद शुरू हो जाता है। तो गुरुम हम कृत्य तुम कृत्य विप्रान निर्जित्य वादत, ऐसा करके जो जीता हुआ है गुरु को भी जीते, विद्वानों को भी जीते, सबको जीता है, तो उसके मरने के बाद ऐसा व्यक्ति मशान घाट में वृक्ष बनकर पैदा होता है। पहले जंगम था, अब स्थावर जीव होगा वो, समझे नहीं? तो हमारे वैदिक सनातन धर्म में ही एक विशेषता है कि मनुष्य से वह पशु पक्षी भी हो सकता है, और मनुष्यों से वह वृक्ष लता भी हो सकता है जन्मांतर में। तो आजकल कुछ ऐसे धर्म हमारे मानव समाज में प्रचारित हो रहे हैं जो ये कहने लग गए हैं कि मनुष्य मरकर पैदा होगा तो मनुष्य के रूप में अन्य योनियों में मनुष्य जा ही नहीं सकता, और कहते कहते यहां तक कि हमने सुना है, यहां तक भी कहने लग गए हैं मनुष्यों में भी पुरुष होकर पैदा हुआ है, मर के फिर जन्मेगा तो पुरुष योनि में ही जन्मेगा, स्त्री योनियों में नहीं जन्म सकता, नहीं पैदा हो सकता है। और स्त्री होकर कोई पैदा हुई है और वो मरेगी, और यदि दोबारे उसको जन्म मिलना होगा तो वो स्त्री शरीर में ही उसको दोबारे जन्म मिल सकता है, पुरुष शरीर में नहीं मिल सकता। ऐसे ऐसे पाखंड का प्रचार भी समाज में करने लग गए हैं, उनको शास्त्र का मर्म कोई मतलब नहीं, सनातन धर्म का कोई मतलब ही नहीं, रहस्य उनको मालूम नहीं। जो सनातन धर्म जिन शास्त्रों पर टिका हुआ है वे शास्त्र जीवात्मा के लिए यह कहता है कि योनिमन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनाम स्थाणुमन्ने अनुसंयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्। कठोपनिषद की श्रुति है ये, यमराज जी नचिकेता को समझा रहे हैं, और क्या यमराज से भी ज्यादा ज्ञानी होगा ये मूर्ख लोग और ये कहने लग गए हैं? यमराज तो सर्वज्ञ हैं, ब्रह्म विद्या के प्रथम आचार्य हैं, ऐसे ज्ञानी तो यमराज, वो नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश कर रहे हैं, उपनिषद विद्या का, और वो समझा रहे हैं। और नचिकेता ने प्रश्न किया यही कि कोई कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता नहीं, और कोई कहते हैं कि मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। ये आत्मा के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि मरने के साथ साथ ही आत्मा बिल्कुल समाप्त हो जाता है कि अब मरने के बाद भी आत्मा रहता है, ये नचिकेता का प्रश्न है। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यो यदिष्यति तद वद। जो धर्म से भी परे है, दूसरा प्रश्न, जो धर्म से परे है, अधर्म से परे है, जो कर्म और कर्म फल से परे है, कृता कृतात्, ऐसा कोई तत्व आप जानते हो तो मुझे बता दीजिए इत्यादि। तो नचिकेता ने जब आत्मा के बारे में इस तरह प्रश्न किया कि लोगों में चर्चा मैंने सुनी है कि मरने के साथ साथ आत्मा भी नष्ट हो जाता है, कहते हैं कुछ लोग, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद भी रहता है, तो सही में आत्मा मरने के बाद भी रहता है कि नहीं, या मरने के साथ ही समाप्त होता है? तब यमराज ने कहा कि बेटा, वास्तव में मरना और जीना इस प्रश्न ही आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। तब इस तरह मरने के बाद रहना और न रहने का प्रश्न है कि निश्चित है कि आत्मा कभी भी नाश होता ही नहीं है, चाहे शरीर जन्मे चाहे शरीर मरे, शरीर के मृत्यु से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। इसी तरह शरीर के जन्म से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, शरीर के जन्म से आत्मा का कोई संबंध नहीं है जन्म न में, और शरीर के मरने से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। तो इसी तरह आत्मा तो नित्य है, वो धर्म से परे है, अधर्म से परे इत्यादि वहां उपदेश किया है। तो अभिप्राय यह है कि कुछ लोग, इस रहस्य को न जानने वाले लोग कह देते हैं कि स्त्री शरीर में रहे हुआ जो आत्मा है, मरने के बाद फिर उसका जन्म होगा तो स्त्री शरीर में ही होगा, दूसरे किसी शरीर में नहीं हो सकता। मनुष्य शरीर में रहने वाला आत्मा यदि फिर जन्मेगा तो मनुष्य ही होगा, दूसरा किसी शरीर में वह पैदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? तो वो कहते हैं कि एक शरीर में, जिस शरीर में, जिस ढांचे का बन गया वह आत्मा, वही ढांचे का शरीर मिलेगा तो जन्म होगा, अन्यथा नहीं। कोई ईंट है क्या आत्मा? है गीली मिट्टी है? नहीं, सूखी मिट्टी है क्या? ईंट है क्या? जैसे एक सांचे में मिट्टी को, गीली मिट्टी को डालो और वह सूखे और उसको पके, तो जो सेब बन गया उस ईंट का, वैसा ही सांचा मिले तो फिट बैठेगा, और वैसा सांचा नहीं मिला तो वो ईंट वहां फिट बैठेगा? स्क्वायर का जो ईंट होगा, वह चार कोने वाला जो ईंट बना होगा, वो चार कोने के सांचे में ढालकर बनाया गया है, और चार कोने का सांचा ही मिलेगा तो वो ईंट उसमें फिट बैठेगा। कराची सांचा तीन कोने का होगा तो वो ईंट उसमें फिट बैठेगा? बोलो, नहीं बैठेगा ना। और दो कोने का होगा या लंबा होगा तो फिट बैठेगा? नहीं बैठेगा। कहीं वो सांचा गोल होगा तो वो ईंट फिट बैठेगा? तो ऐसी कल्पना करके मनुष्यों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं कि आत्मा एक बार जिस शरीर के ढांचे में ढल गया है, मरने के बाद वैसा ही शरीर में तो पैदा हो सकता है, उससे अन्य शरीर में आत्मा पैदा नहीं हो सकता। इतने भ्रमित कर दिए जबकि हमारा वैदिक सनातन धर्म का कहना यह है आत्मा वह सूखी ईंट की तरह नहीं है कि एक ढांचे में ढल गया है। आत्मा तो उसकी तरह है कि एक हवा की तरह है, एक आकाश की तरह है। हमेशा उपमा दी गई है। मान लो एक आजकल अलग अलग आकार के गुब्बारे होते हैं ना, मनुष्य के आकार का गुब्बारा बना देते हैं, पक्षी के आकार के गुब्बारे बना देते हैं, प्लेन के आकार के गुब्बारे बना देते हैं। उस गुब्बारे में जो हवा भर दी गई है, प्लेन के आकार का जो गुब्बारे के हवा है, उस हवा को यदि निकालकर घड़े के आकार के गुब्बारे में भरना चाहो, भर सकते हो कि नहीं? कैसे भरोगे? वो हवा का तो प्लेन के आकार का बन गया, वो तो आकार, तो फिर घड़े के आकार में कैसे घुसेगा? वो प्लेन कहीं घड़े के अंदर घुस सकता है? अरे बाबा, कोई सूखी ईंट थोड़ी है, वो तो हवा है। हवा को तो जैसा आकार दोगे वैसे ही बन जाएगा। और यदि कोई गुब्बारा नहीं मिला तो वह निराकार आकाश में विचरण करता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे पानी चार कोने वाला बर्तन में रखोगे तो पानी चार कोने का ही शेप होगा, और तीन कोने वाले बर्तन में रखोगे तो उसी शेप में ढल जाएगा। वो ये नहीं कहेगा वो पानी, मैं पहले चार कोने के शेप में था, अभी चार कोने के शेप वाला बर्तन लाओ तो मैं उसमें रहूंगा, ये तीन कोने वाले में मैं फिट नहीं हो सकता। पानी क्या ऐसा बोलता है क्या? है? एक मामूली सा पानी में वो चीज नहीं है। तुमने कैसे कल्पना कर ली कि आत्मा भी शरीर के आकार के शेप में वो ढल गया, अब वही शेप का शरीर मिला तो जन्मेगा, नहीं तो जन्मेगा ही नहीं? ये कहां से कल्पना कर ली तुमने भाई? ये शास्त्र के मर्म को ठीक से गुरुमुख से परंपरा से जिन्होंने अध्ययन नहीं किया है ऐसे उटपटांग व्याख्या करते हैं। हमने सुना है लोग ऐसे ऐसी व्याख्या करने वाले भी आजकल धर्म के नाम से मनुष्य समाज में खूब प्रचारित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, हम सुनते हैं। लेकिन ये मूर्खता उपहास के अलावा कुछ नहीं। हमारा शास्त्र तो ये कहता है कि मनुष्य होकर पेड़ पौधे भी होते हैं, तमाम उदाहरण है। कुबेर के पुत्र नलकुबर थे, क्या थे वो लोग? मनुष्य थे कि देवता थे? देवकोटि के कुबेर के पुत्र, कुबेर खुद देवकोटि का है, तो कुबेर का पुत्र देवकोटि के थे नलकुबर, और उनको श्राप मिल गया। और क्या श्राप मिला है? क्या हुए वो लोग? वृक्ष हो गए, वृक्ष हो गए। जो मनुष्य से वृक्ष हो गए, कोई आपत्ति हुई उनको है? कुछ नहीं। राजा निर्ग था, शास्त्र में प्रमाण है कि नहीं बोलो? राजा निर्ग दान किया हुआ गाय को, एक बार दान किए हुए गाय को भूल बस फिर दोबारे दान कर दिया, सावधानी नहीं रखा उसने। उस असावधानी का परिणाम क्या हुआ? श्राप दे दिया ब्राह्मण ने कि तू राजा होकर भी सावधानी नहीं रखता है और दाता बनता है, और जिस गाय को तूने कल किसी और ब्राह्मण को दान दिया था वही गाय को फिर आज मुझे दान दे रहा है, हैं? तो इस राज पद में मनुष्य योनि में बैठने लायक नहीं है, जा गिरगिट हो जाओ। श्राप दे दिया। और कहां राजा निर्ग और कहां गिरगिट होना पड़ा है? तो हो गया कि नहीं बोलो? कोई आपत्ति है?